खुदावंद के मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। सो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सीखें, आए हम सब खुदा के हजूर झुकें और खुदा की अकल और दनाई को मांगेंगे, ताकि हम जो कुछ भी सीखें हम सब की जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, और आज के दिन में हम सब की मदद और रहनुमाई करने वाला खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी बने। हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, और यीशु मसीह के नाम में खुदा खुदा तेरा शुक्र गुज़ार हूँ तमाम भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जो आज खुदा खुदा मुल्क पाकिस्तान में इकट्ठे हैं इस सुबह में। सो आज हम जो कुछ भी सीखें हम सबको बड़ी हिकमत और दनाई दे, और तेरा कलाम जो बेतासी नहीं लौटता 100 गुना फल लाए। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें नए अहदनामों में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 2 बाप। आज उसकी हम 9वीं आयत को देखेंगे, इसमें से सीखेंगे और अपने आप को 10वीं आयत के लिए तैयार करेंगे, और देखेंगे कि खुदावंद की जिंदा आवाज़ हमें क्या सिखाना चाहती है। इफ़सियों 2 बाप उसकी 8वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, हम सीख चुके हैं 2 बाप से, पहली आयत से शुरू करके। 8वीं आयत में यूं खुदावंद का बंदा पालूस रसूल कहता है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, और ना ईमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यसु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। हमने पिछले दिनों में सीखा था कि निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा पर, यीशु मसीह पर, उसके काम पर यकीन करने से मिलती है। क्यों हम इस बात पर गौर कर रहे हैं? क्योंकि 9वीं आयत में पालूस रसूल इस बात को वाजिया करना चाहता है, बार बार इस बात पर वो गौर दिलाना चाहता है कि 9वीं आयत कहती है, ना के ईमाल के सबब से, ना के ईमाल के सबब से। क्या निजात हमें हमारे कामों से, हमारी नेकियों से, या हमारे किसी और हदिये या शुक्रगुजारी या कुर्बानी से नहीं है? पालूस यहाँ पर कहता है, ताकि कोई फख्र ना करे। क्यों कहता है? क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से, अमान किस पर? खुदावंद यीशु मसीह पर। किसके वसीला से? फजल, खुदा की रहमत, खुदा की शफकत, खुदा का तोहफा, जो हमें बख्शिश के तौर पर दिया गया है, जो सिर्फ खुदा ही हमें दे सकता है, हम कमा नहीं सकते। हमें सिर्फ ये तोहफा मिलता है खुदा की तरफ से। और 9वीं आयत, ना और ना ईमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। आज इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस मसले का सामना करते हैं कि खुदा को खुश करने के लिए अच्छे काम, अच्छे ईमाल, नेकियां करना चाहते हैं और अपने आप पर फख्र करना चाहते हैं। फख्र का मतलब है गरूर करना, शेखी मारना, तकब्बर करना, खुद पसंदी का इजहार या घमंड करना। और जैसे बहुत दफा हमारे रिवाज में कहा जाता है, अपने मुंह से मियां मिठू बनना। सो खुदा ऐसी बातों को, ऐसे कामों को हरगिज पसंद नहीं करता। सो इसीलिए पालूस रसूल कहता है कि बहुत से लोग, जैसे मैंने कहा, कि अपने ईमाल, काम और नेकियों पर फख्र करते हैं, लेकिन खुदा क्या पसंद करता है? खुदा ईमान पसंद करता है। जब हम इब्रानियों 11वां बाप उसकी 6वीं आयत को देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। सो आज हम देखेंगे कि खुदावंद खुदा को इंसानी काम या नेकी खुश नहीं कर सकती। क्यों, क्या वजह है? जैसे मकई से मकई पैदा होती है, वैसे ही कनक से कनक ही पैदा होगी, उससे कोई और सब्जी या फल पैदा नहीं होगा। सो क्यों इंसानी नेकी खुदा को पसंद नहीं है, खासकर नजात के काम के लिए? क्योंकि बाइबल कहती है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हम इंसान निजात हासिल करने के लिए कोई भी अच्छा काम पैदा नहीं कर सकते। अगर हम किसी चीज को बोएंगे, मिसाल के तौर पर कोई अच्छी नेकी बोएंगे, तो वो क्या है? एक नेकी है, उससे हमें निजात नहीं मिल सकती। क्यों? बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? कि हम अच्छे रासबाजी के काम पैदा नहीं कर सकते। मेरे साथ निकालें यसाया नबी का सहीफा, उसका 64 बाप, यानी कि 60 ते 4 64 बाप उदी 6 आयत। वहां पर हम देखते हैं 64 बाप में उसकी 6 आयत में खुदा का बंदा यसाया नबी इस बात को वाजिया तौर पर कर देता है कि इंसान क्या है, उसकी हकीकत क्या है, जिसके बारे में पालूस रसूल वाजह तौर पर कहता है रोमियो 3 बाप में, कोई रासबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई पाक नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब ने आदम के गुनाह के बायस क्या की है, खुदा के साथ दूरी है। सो यसाया 64 बाप उसकी 6 आयत में खुदा का बंदा यसाया कहता है, और हम सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज। यहां पर वो ध्यान दिलाना चाहता कि हम जो कुछ भी हैं बगैर खुदा के, वो क्या है? नापाकी है। बगैर खुदा के हम नापाक चीज हैं, और हमारी तमाम रास्तबाजी, रास्तबाजी यानी के वो अच्छाई और सदाकत और भलाई के काम क्या है? नापाक लबास की मानद है। आज यही बहुत बड़ा मसला है इंसान के लिए समझने के, इंसान समझे, इंसान अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को हिकमत, अपने आप को जोरावर, अपने आप को समझदार और अपने आप को पाक समझता है। और इसीलिए इंसान बहुत दफा अपने जहन में कहता है कि मुझे जरूरत नहीं कि मैं खुदा के फजल या उसके रहम पर यकीन करूं, मैं आप अपना रास्ता बनाऊंगा। जैसे आज बहुत से लोग, इंसान बहुत से काम करता है, और ये हमारी फितरत में है। आपको याद होगा जब आदम ने और हवा ने जब फरेब खाया और आदम ने खुदा की नाफरमानी की, तो क्या हुआ? वो बाग में से क्या हुए? वो अंजीर के पत्तों को लेकर उन्होंने अपने लिए लूंगियां बनाई और खुदा से वो छुपना शुरू हो गए। वो खुदा से डरे, वो छुप गए, और अपने नंगेपन को ढकने के लिए क्या किए? अपने कपड़े खूब तैयार किए ताकि अपने आप को तसल्ली दे सकें कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है। वो अच्छा था आदम और हवा की नजर में, लेकिन खुदा की नजर में वो अच्छा नहीं था, काबिले तारीफ नहीं था। इसी तरह बहुत दफा इंसान जब निजात हासिल करना चाहता है और कहता है कि मुझे यसु मसीह पर यकीन करने की जरूरत नहीं, मैं यसु को कबूल नहीं करूंगा, यसु सलीब पर तो मरा है लेकिन उसका जो मरना वो बेफायदा है, जैसे आज दुनिया भर में बहुत से लोग यकीन करते हैं कि मैं खुदा को खुश कर सकता हूं अपने नेक कामों से, अपने रुपए पैसे से, अपने अच्छे चाल चलन से। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जैसे मकई से मकई पैदा होती है, कनक नहीं, वैसे ही गुनाह आलूदा इंसान से जितने भी अच्छे काम कर ले, गुनाह ही पैदा होगा। इसलिए हमें नए तौर पर पैदा होने की जरूरत है। इसलिए पालूस रसूल कहता है कि कोई फख्र ना करे, कोई अपने आप पर भरोसा ना करे, कोई तकब्बर ना करे, कोई शेखी ना मारे। अगर कोई शेखी मारे, अगर कोई तकब्बर करे, तो उसका तकब्बर बेफायदा है, क्योंकि हम अपने अपने कामों से खुदा को खुश नहीं कर सकते। मेरे साथ एक हवाला निकाले, रोमियो आठ बाप उसकी आठ आयत, जिसमें पालूस रसूल सच को बयान करता है। कहता है जो जिस्मानी है, यानी कि जो खुदावंद यसु मसीह से दूर हैं, जो नए तौर पर पैदा नहीं हुए, जिन्होंने यसु मसीह की निजात को नहीं कबूल किया, वो क्या हैं? पालूस रसूल कहता है रोमियो आठ बाप उसकी आठवीं आयत में, और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। इंसान खुदा को खुश नहीं कर सकता कि मैं ये करूंगा ताकि खुदा खुश हो जाए। आदम ने अपने लिए लुंगियां बनाई, लेकिन वो काम नाकाम था, वो बेफायदा ठहरा। लेकिन जब खुदा ने उस पर तरस खाया और उसको बड़ा कुर्बान करके उसकी खल के कपड़े बनाकर उसको पहनाए, तो आदम का नंगापन ढका गया। आदम नंगा था, खुदा ने उसके नंगेपन को ढांप दिया। किसे? अपने फजल से। इसलिए अगर आज हम इस जमीन पर हैं, और अगर आप आज किसी को जानते हैं जो अपने आप पर यकीन या भरोसा या शेखी मारता है कि मैं पाक हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं, तो आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा फख्र करना बेफायदा है। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अगर कोई फख्र करे तो वो खुदावंद खुदा पर करे, अगर कोई तकब्बर करे तो अपनी कुव्वत पर नहीं बल्कि खुदा की, अगर कोई यकीन करे तो अपने आप पर नहीं बल्कि खुदावंद खुदा पर, जिसके बारे में पालूस रसूल बयान करता है, जो आज बहुत से लोगों का हाल है इस दुनिया में। मेरे साथ निकालें इस हवाला को, पहला करंथियों उसका पहला बाप उसकी 18वीं आयत। इन हवाला जात को पढ़ने का मतलब, सिखाने का मतलब ये है ताकि हम अपने ईमाल पर, अपने जोर पर, अपनी नेकियों पर, अपने हदिया जात पर नहीं बल्कि खुदा के फजल पर यकीन करें। और इसका बहुत गहरा तल्लक है, ये बात हो रही है निजात के साथ, कि निजात हासिल करने के लिए लोग काम करना चाहते हैं, खुदा को खुश करना चाहते हैं, लेकिन खुदा क्या कहता है 18वीं आयत में? क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। जो लोग यकीन नहीं करते मसीह का, वो कहते हैं ये बेवकूफी है, कैसे हो सकता है कि यसु मसीह मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मरे? लेकिन जो ईमान लाते हैं वो कहते हैं ये खुदा की कुदरत है। 19वीं आयत में पालूस कहता है इस दुनिया के लोगों से, कहता है क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अकलमंदों की अकल को रद्द करूंगा। कहाँ का हकीम यानी कि हिकमत रखने वाला, कहाँ का फकीया यानी कि जो अपने कामों पर तकब्बर करता है, कहाँ का इस जहां का बहस करने वाला? क्या खुदा ने इस दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मनादी की बेवकूफी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। यहां पर पालूस रसूल बात कर रहा है उस दौर के लिहाज से यूनानी और यहूदी लोगों से, और 22वीं आयत में क्या कहता है? यहूदी क्या चाहते हैं? चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश करते हैं। यहूदियों को हम देखते हैं कि वो बार बार खुदा से निशान तलब करते हैं, क्या अगर ये सच है तो हमें निशान दे। हो सकता है आप में भी बहुत से ऐसे भाई बहन हों जो चाहते हैं कि खुदा मुझे सबूत दे, तब मैं यकीन करूंगा कि तू वाकया ही यहाँ पर मौजूद है। यहूदी खुदा पर यकीन करते थे, उसकी मौजूदगी पर, अपने बाप दादा से उसके अजीब कामों को सुनते आए। लेकिन यूनानी चाहते हैं क्या है? यूनानी क्या चाहते हैं? हिकमत। यूनानी लोग हिकमत की तलाश करते हैं और वो खुदा का इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि खुदा मौजूद नहीं। यूनानी लोग बहुत से देवी देवताओं की, बहुत से उनके दरमियान मंदिर हैं जिनकी वो क्या करते हैं, देवताओं की, देवियों की, जानवरों की पूजा करते हैं। लेकिन ये सब बातें पालूस किस लिए कहता है? 23वीं आयत, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। यहूदियों ने ठोकर खाई जब यीशु मसीह को कहा कि इसे मसलूब कर दो। गैर कौमों के लिए क्या ठहरे ये पैगाम? क्या ठहरा? बेवकूफ़ी की बातें ठहरी। क्यों? उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि खुदा इंसान बनेगा और जमीन पर आएगा और उनके गुनाहों का कफारा देगा और सलीब पर से कब्र में उतारा जाएगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। सो इंसानी हिकमत जो है वो खुदा की हिकमत को रद्द करती है। और क्या लिखा है 24वीं आयत ने? लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हो या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है, क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। सादा तौर पर इंसान जितनी ज़्यादा भी गहरी गहरी सोच रख ले, खुदा अगर सिर्फ कोई काम करे तो वो बहुत ही बेहतर है। इंसान कितनी भी ज़्यादा कुव्वत ताकत इकट्ठी कर ले, खुदा की तो कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए 26वीं आयत में क्या कहता है पालूस रसूल? ऐ भाइयों, ईमानदारों से कहता है, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए। वो कहता है उनको जो मौजूदा ईमान लाए कि तुम अक्लमंद या दुनिया के लिहाज से बहुत ज़्यादा समझदार या ताकतवर या बहुत ज़्यादा रास्तबाज नहीं हो। क्यों? क्योंकि 27वीं आयत में कहता है, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें। आपका ईमान, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, बेशक आपके पास दौलत नहीं, बेशक आपके पास हिकमत, दनाई या कुदरत या और कोई बात नहीं, लेकिन आपका ईमान बहुत ही कीमती और बहुत ही अजीब है उन लोगों के लिए जिनके पास दुनिया का धन दौलत है, हिकमत और दनाई है, लेकिन खुदा नहीं है। ये बात पालूस रसूल हमारे जहन में और उस वक्त के लोगों के जहन में डालना चाहता है कि सबसे उम्दा बात यह है कि तुम खुदा को जानते हो, कि तुम यीशु मसीह को जानते हो कि वो तुम्हारा निजात दहिंदा है। इसलिए पालूस कहता है, खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवकूफ़ों को चुन लिया कि मौजूदा को नेस्त करे। क्या कहा था यीशु मसीह ने? कि मैं तबीब किस लिए आया हूँ? तंदुरुस्तों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए। तो वहां पर क्या बात हो रही? फकी फरीसी नहीं चाहते थे यीशु मसीह पर यकीन करना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? कि मैं ज्यादा पसंद करता हूं कि जवारियों और शराबियों और गुनाहगारों के साथ बैठकर खाऊं ताकि वो उस निजात के तोहफे को हासिल करें। लेकिन जो अपने आप को आला समझते थे, उन्होंने यीशु का इनकार कर दिया। और क्या लिखा है 29वीं आयत में? किस लिए? ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। अगर मैं अकलमंद हूं, अगर मैं ताकतवर हूं, अगर मेरे पास सब कुछ है, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे खुदा की जरूरत नहीं। पिछले दिनों में एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि मैं सब कुछ मेरे पास है, मुझे क्यों यीशु को कबूल करने की जरूरत है? तो मैंने उसे बताया कि इसलिए कि तू गुनाहगार है और गुनाह की माफी सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। तो एक हफ्ते में उसने यीशु मसीह को कबूल किया जब उसने ये जाना, और उसका फख्र किस पर था? खुदा पर, ना कि अपनी जात पर। इसलिए 29वीं आयत में क्या लिखा है? लेकिन तुम उसकी तरफ से यीशु मसीह में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रासबाजी, पाकीजगी और मखलसी। और 31वीं आयत में लिखा है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। अगर आज आप किसी को जानते हैं जो अपने रुपए पैसे पर, हिकमत पर, कुव्वत पर, ताकत पर, खूबसूरती पर या किसी और चीज़ पर भरोसा करता है, तो आप बड़े हौसले के साथ इस बात का जायज़ा लगा सकते हैं कि वो इस दुनिया में तो कुछ है, लेकिन खुदा के सामने बेवकूफ़ और ना अमीर है। इसलिए मैं चाहता हूं इस आयत पर हम खत्म करें। मेरे साथ निकालें यर्मिया, यर्मिया उसका 9 बाप, 9 बाप उसकी 23वीं आयत। 23वीं आयत आप सबकी हौसला अफजाई के लिए मेरे लिए, के खुदावंद किस बात से खुश होता है। खुदावंद हमारे कामों से, हाँ किसी और से बात से नहीं, खुदावंद खुश होता है इस बात से। 23वीं आयत में लिखा है यर्मिया 9 बाप उसकी 23वीं आयत, खुदावंद यूँ फरमाता है, यसु मसीह खुदावंद खुदा यहाँ पर बात कर रहा है कि साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। 3 बातें, कि जो कोई हिकमत वाला है वो अपनी हिकमत पर गरूर ना करे, जो ताकतवर है वो अपनी ताकत पर गरूर ना करे, जो मालदार है को वो अपने माल पर फख्र गरूर ना करे। लेकिन क्या लिखा है 24वें में, लेकिन जो फख्र करता है इस बात पर, इस चीज पर, इस सोच पर, इस सच्चाई पर, क्या लिखा है, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूं, जो दुनिया में शफकत यानी रहम तरस, अदल यानी कि इंसाफ, और रासबाजी यानी कि सदाकत के काम, रास्ती के काम को अमल में लाता हूं, क्योंकि मेरी खुशनूदी यानी कि मेरी खुशी इन्हीं बातों में है, खुदावंद फरमाता है। तो खुदावंद इस बात से खुश होता है कि आप उसे जानते हैं, इसलिए जो कोई यीशु पर ईमान लाता है वो निजात और हमेशा की जिंदगी का वारस है, हमेशा की जिंदगी का वारस है। सो आप बहुत ही मुबारक हैं खुदावंद की नजर में, और यही बात खुदावंद खुदा को खुश करती है, खुदा को पसंद आती है कि हम उसके दिए तोहफे को कबूल करें। और इसीलिए पालूस ने किया क्या कहा है कि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, ताकि हम अपने आप पर भरोसा ना करें, ताकि अपने आप में हम तकब्बर और शेखी और मियाँ मिठू ना बने, अपने मुंह से अच्छे बोल बोलने वाले ना बने। सो आगे चलकर हम सीखेंगे 10वीं आयत में, खुदावंद आपको बरकत दे, आए हम खुदा के हुजूर झुकें। खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।